ठंडी लग रही है क्या? ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की वाणी बड़ी गुह्य है। कल की वाणी में बाबा ने ये बात उठाई थी कि दुनियावी लोग डरते हैं कि गुरु से श्राप मिलेगा। चलो वो तो जंतर मंतर करके श्राप देते हैं, लेकिन जो ज्ञान मार्ग में होते हैं उनको श्राप नहीं मिलता है। लेकिन ये भी बात बताई थी बाबा ने कि रावण से श्राप मिलता है, कोई व्यक्ति से नहीं मिलता है। तो आज की वाणी में बाबा ने ये बात स्पष्ट बताई है कि बच्चे, रावण का श्राप कब मिलता है? जब आप देह अभिमान में आते हो। आप देखेंगे इतिहास में द्वापर के शुरुआत में जब ये कहानी होती है ना, क्रिश्चियन धर्म में एडम ईव जब विकार में गए तब श्राप लगा ना, उसने एप्पल खाया था, मना किया था फिर भी उसने एप्पल खाया था, मना टेम्पटेशन शुरू हुआ। तब फिर नीचे उतरने की और तेजी से बढ़ा। तो एक होता है ब्राह्मण जीवन में हमारे सामने टेस्ट पेपर आते हैं, टेस्ट पेपर आते हैं हमारी ज्ञान को टेस्ट करने के लिए, कहां तक वो ज्ञान धारणा में आई है उसका टेस्ट पेपर आता है। दूसरा होता है विघ्न, और जो विघ्न आते हैं वो पुराने संस्कार स्वभाव के कारण आते हैं। चाहे हमारा पुराना संस्कार स्वभाव, चाहे औरों का, और आपस में जो संस्कार स्वभाव का टक्कर होता है उसकी वजह से विघ्न आते हैं। तीसरी बात है ग्रहचारी। ग्रहचारी लगती है हमारे पूर्व कर्मों के वजह से, जो पिछले जन्मों का कर्म किया है उसका कुछ भोगना है, तो उसके वजह से ग्रहचारी बैठती है। तभी उस समय योग नहीं लगता है, आत्मा कंप्लेन करती है, कंफ्यूजन में रहती है। लेकिन देदान तो छूटे ग्रहण, फिर भी कुछ दान करते करते, ज्ञान दान करो, सेवा करो, तो ग्रहण छूटती जाती है। लेकिन रावण से जब श्राप मिलता है तो श्राप से हम बिल्कुल कंगाल नीच उतरते जाते हैं, दिवाला मारते हैं। और आज बाबा ने ये बात भी अंडरलाइन की है कि बच्चे, खास करके दृष्टि और वृत्ति में पवित्रता चाहिए। जब क्रिमिनल दृष्टि रहती है तब वो श्राप का असर लगता है। अब देखो, आपने किसी के प्रति कुछ अवगुण देखा और उसको मन चित्त में स्वीकार किया, आपने खुद अपने आप पे श्राप डाला। बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कई मुरलियों में बताए हैं, बच्चे आप किसी का भी अवगुण देखेंगे तो आपके ऊपर ग्रहचारी बैठेंगे। तो अभी हमारे कर्मेंद्रियों पे बहुत डिसिप्लिन और जीत चाहिए। तो इसके कनेक्शन में आज बाबा ने ये स्मृति दिलाई है कि बच्चे, आप क्यों आए हैं यहां पे? अमरपुरी के अमर लोक के मालिक बनने के लिए आए हैं। तो जब मालिकपन की स्मृति रहती है और धर्म की स्मृति रहती है तब कर्म श्रेष्ठ बनते हैं। तो आज बाबा ने खास धर्म कर्म संबंध के ऊपर भी अंडरलाइन किया है कि ये धर्म ताकत देने वाला धर्म है। हम योग बल से स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, पहले स्थूल कर्मेंद्रियों के ऊपर जीत पाते हैं, फिर याद की फांसी पे चढ़े हुए होते हैं तो सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल आ जाता है, और फिर लास्ट में चित्त साफ, बिल्कुल कोई भी पास्ट की मेमोरी हमको खींचे नहीं, तब फिर हम धर्म की स्मृति में रहते हैं ना, तब संकल्पों में शक्ति आती है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आती है, तब हम सभी को खुशखबरी दे सकते हैं कि नई डेटी डिनेस्टी स्थापन हो रही है। फुल कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं। तो आज बाबा की वाणी मीठी है, गुह्य है, रमणीक है, बहुत माल देने वाली मुरली है आज। तो आज है 22 नवंबर 2025 की साकारवाणी, और बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डेटी डिनेस्टी स्थापन हो रही है। मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डेटी डिनेस्टी स्थापन हो रही है। जब वाइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। जब वॉइसलेस वर्ल्ड होंगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। प्रश्न, रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? रावण का श्राप कब मिलता है और श्रापित होने की निशानी क्या है? उत्तर, जब तुम देह अभिमानी बनते हो, जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं, अभी निशानी सुनो, श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती है, नीचे उतरती जाती है। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है, अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है। अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है, अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। यह तो समझते हो, सभी तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे। तुम ही पहले पहले सत्युग आदि में पूज्य देवी देवता थे। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर डिनेस्टी होगी। राजाए घराने के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होंगी। ये जैसे एक कहानी है, डिनेस्टी माना हर लेवल्स होते हैं, हर एक का पद अलग अलग होता है। तो ये जैसे एक कहानी है, 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था। ये स्मृति में लाते हैं, भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, यह बेहद का बाप बैठ समझाती है, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किस चीज की? मनुष्य समझते हैं वह सबके अंदर को, कर्म विकर्म को जानने वाले हैं। ये नॉलेज बैठ के बाबा नहीं समझाते हैं कि हर एक के अंदर क्या क्या है। खुद का परिचय देता है, आत्मा का परिचय देता है, कर्म की फिलॉसफी का परिचय देता है, ड्रामा का, वृक्ष का, लेकिन हर एक आत्मा के अंदर क्या है वो तो ज्ञान नहीं दे रहे हैं। तो मनुष्य ये समझते हैं कि वह सबके अंदर को, कर्म विकर्म को जानने वाला है, परंतु अभी बाप समझाते हैं हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहती है, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है, रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाए। यह भी तुम समझते हो हम आत्माएं सब कुछ करती है, आत्मा ही कहती है यह खट्टा है, यह नमकीन है। आत्मा ही समझती है हम अभी विकारी पाप आत्माएं हैं। अंदर ज्ञान एक आईना है जो बाबा दे रहा है, उस आईने से आत्मा के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन होता है, कहां तक विकार में गई हूं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं आत्मा ही समझती है हम अभी विकारी पाप आत्माएं हैं। आसुरी स्वभाव है, आत्मा ही यहां कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पार्ट बजाती है। तो यह निश्चय करना चाहिए ना, आत्मा ही सब कुछ करती है, बोलती है, सोचती है, कर्म करती है। तो बाबा कहते हैं तो यह निश्चय करना चाहिए ना, हम आत्मा ही सब कुछ करती हूं। अभी बाप से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। यह भी समझते हो पूज्य और पुजारी, पावन और पतित बनते आए हैं। जब ड्रामा का ज्ञान मिलता है आत्मा को, तो सामने कॉन्ट्रास्ट रहता है, मैं क्या थी, मैं क्या बन रही हूं। तो बाबा कहते हैं तो पूज्य और पुजारी, पावन और पतित बनते आए हैं। जब पूज्य है तो पावन कोई हो न सके, जब पुजारी है तो पावन सॉरी जब पूज्य है तो पतित कोई हो न सके, जब पुजारी है तो पावन कोई हो न सके। सत्युग में है ही पावन पूज्य। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तब सभी पतित पुजारी बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं देखो शंकराचार्य भी मेरी पुजारी, मेरा पुजारी है, मेरे को पूछते हैं ना, शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होता है। भक्ति मार्ग में कितने अलग अलग शिवलिंग बनाए हैं, हीरे का, सोने का, पत्थर का, चांदी का। अब जो पूजा करते हैं उस पुजारी को पूज्य तो कह नहीं सकते। सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी हो नहीं सकता, बल्कि कितना भी खुद को टाइटल देवे, श्री श्री कोई भी कोई, लेकिन पूज्य कोई हो नहीं सकता। पूज्य पवित्र होते हैं फिर अपवित्र बनते हैं। जन्म ही ऐसे लिया है, अपवित्रता से ही जन्म लिया है, तो पूज्य कैसे बन सकते हैं? तो पूज्य पवित्र होते हैं फिर अपवित्र बनते हैं। पवित्र होते हैं नई दुनिया में, पवित्र ही पूजे जाते हैं। अभी बाबा ने उदाहरण दिया है, जैसे कुमारी जब पवित्र है तो पूजने लायक है, अपवित्र बनती है तो फिर सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है। हम जब छोटे थे ना, तो आसपास बाजू वाले घर में नया मकान लिया था उन्होंने, तो जो भी नेबरहुड में जो भी कुमारियां थी, छोटी छोटी कुमारियां, सभी को बुला करके कुमारियों की पूजा की। हमको एक स्टूल पे खड़ा कर दिया, नीचे एक वो पानी का एक बाउल रखा, और फिर पूरे हमारे पैर धुलाई किए, हमको श्रृंगार किया, हमको गिफ्ट दिया। तो हम देखते हैं ना, वो कन्या पूजन करते हैं ना नए मकान का उद्घाटन करने के लिए, तो जब कुमारी होती है तो पावन है तो पूजने लायक है, अपवित्र बनती है तो फिर सबके आगे सिर झुकना पड़ता है। पूजा की कितनी सामग्री है, कहां भी प्रदर्शनी म्यूजियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए, नीचे में यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट। हम यह पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, वहां फिर कोई और धर्म नहीं रहता। तुम समझा सकते हो, प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे, तो फिर क्या प्रबंध करें? समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध होना चाहिए। मुख्य बात ही यह है, हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं, हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह डेटी डिनेस्टी थी, अब नहीं है, फिर से इनकी स्थापना होती है और सब विनाश हो जाएंगे। सत्युग में जब यह एक धर्म था तो अनेक धर्म थे नहीं, जब एक से अनेक बन जाते हैं ना, तब संघर्ष शुरू होता है। तो सत्युग में जब यह एक धर्म था तो अनेक धर्म थे नहीं, अब यह अनेक धर्म मिलकर एक हो जाए, वह तो हो न सके। सब दुनिया में यही चाहते हैं, लेकिन आपस में मतभेद कितनी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कितना है। वह आते ही एक दो के पिछाड़ी है और वृद्धि को पाते रहते हैं, तो एक तो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आने का टाइमिंग ही अलग अलग है। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप है, कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके। इनको कहा ही जाता है विशियस वर्ल्ड। तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं, शिव बाबा वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं, हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारिया है ना। तो जब हम अथॉरिटी से सभी को खुशखबरी सुनाते हैं कि शिव बाबा वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं, तो उसके पीछे लोगों को ये स्मृति आनी चाहिए कि देखो कितना अच्छा परिवार है, भाई बहन आपस में रिस्पेक्ट से रूहानी प्यार से चल रहे हैं। तो जब ये स्मृति रहेंगी कि हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारिया है ना, पहले पहले तो हम भाई भाई है, फिर रचना होती है तो जरूर भाई बहन होंगे। सब कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो भाई बहन की क्रिमिनल आए जा न सके। यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तभी पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। पहले आती है पवित्रता की प्रतिज्ञा, कुछ भी हो जाए ये मेरा भाई है ये मेरी बहन है। ऐसे भाई बहन की स्मृति में समाते रहो, समेटते रहो और प्यार देते रहो। और ऐसे नहीं कि हर एक के आपस में हर एक को परमिशन है किसी का नुक्स निकालने के लिए, हमारे पास परमिशन नहीं है लॉ उठाने के लिए। हमारे पास इतना परमिशन है कि एक दोनों को याद की यात्रा में रहने का सावधान करने के लिए। भल कोई आए उल्टी सुल्टी बातें करे, उनको बोलो ये बातें छोड़ो बाबा को याद करो, लेकिन किसी का करेक्शन करना नुक्स निकालना ये हमारा काम नहीं है। तब तो आपस में भाई बहन का प्यार रहेगा ना। तो बाबा कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तब ही पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। तुम जानते हो गति सदगति दाता है ही एक बाप, पुरानी दुनिया बदलकर जरूर नई दुनिया स्थापन होनी है, वो तो भगवान ही करेंगे। अब वह नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं यह तुम बच्चे ही जानते हो। अभी पुरानी दुनिया भी है, यह कोई खलास नहीं हुई है, चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अभी बाबा एक राज बता रहे हैं ब्रह्मा के पार्ट का। इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, ब्रह्मा की जोड़ी नहीं ब्रह्मा की तो अडॉप्शन है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं, शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। आत्माएं तो है ही, फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएंगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारिया होंगी ना, तो बहन भाई हो गए। दूसरी दृष्टि निकल जाती है, हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं, हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं। और रावण से क्या लेंगे, रावण से हमको श्राप मिलता है। अभी हम देही अभिमानी बनते हैं, देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है, देह अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता है। ये एक ऑटोमेटिक मशीनरी है। आप देखेंगे आपके दिनचर्या में थोड़ा सा भी आप देह भान में आएंगे ना, तो काम में कुछ गड़बड़ी हो जाएंगी, ठीक नहीं कार्य चलेगा, कोई सहयोग देने वाला तैयार नहीं है। तो बाबा कहते हैं अभी हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है, देही अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता है, श्राप मिलने से नीचे उतरते जाते हैं। अभी भारत श्रापित है ना, भारत को इतना कंगाल विकारी किसने बनाया? कोई का तो श्राप है ना, यह है रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो जरूर दुश्मन है ना। धर्म में ही ताकत होती है, ये भी एक दूसरी निशानी है। श्रापित होते हैं, एक तो नीचे उतरते हैं, कंगाल बनते, विकार बनते हैं, लेकिन आपस में दुश्मनी पैदा होती है। रावण का यही धंधा है, दो ब्राह्मणों के बीच में आकर के एक दोनों को दुश्मन बनाना। और ब्रह्मा का काम है हाँ ब्राह्मणों को भाई बहन बनाना। तो अभी बाबा कहते हैं कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं हम, बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर विजय पाते हैं। याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है और विक्रम विनाश होते हैं। तो सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत और विक्रम विनाश करने की ताकत मिलती है। तो यह भी एक भीति लिख देनी चाहिए। हम खुशखबरी सुनाते हैं, अब इस धर्म की स्थापना हो रही है जिसको ही हेवन स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, बाबा राय देते हैं। सबसे मुख्य है यह, अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है, हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया श्रीमत पर यह कार्य कर रही है। ब्रह्मा की मत नहीं, श्रीमत है, श्रीमत है ही परमपिता परमात्मा शिव की, जो सबका बाप है। बाप ही एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। राजयोग सीख यह बनते हैं, हम ही यह बन रहे हैं ना। हमने बेहद का संन्यास किया है क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं फिर पुराने से ममत्व मिट जाता है, तो बाप कहते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम पढ़ते ही हो, किसके लिए पढ़ते हो? नई दुनिया के लिए। बहुत लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत है दुनिया में जो अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं, लेकिन इस पुरानी दुनिया में रहने के लिए ज्ञान दे रहे हैं। और बाबा हमको नई दुनिया का नया ज्ञान दे रहे हैं ताकि हमारी दिल नई दुनिया में लग जाए, पुरानी दुनिया को छोड़ दे रहे। तो तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। अनेक धर्मों का विनाश एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती है। लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलामिटीज भी आएंगी। सत्युग में जब इनका राज्य था तो और कोई धर्म थे नहीं, बाकी सब कहां थे? यह नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ऐसे नहीं, यह नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरे काम नहीं करते हैं। कितने ख्यालात रखते हैं, अभी बाबा खुद के लिए, ब्रह्मा बाबा खुद के लिए बता रहे हैं कि ऐसे नहीं, ये नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते हैं। कितने ख्यालात रखते हैं, चिट्ठियां लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद करता रहता हूं। बाबा को याद न करे तो विकर्म कैसे विनाश होंगे? आप सोचो ब्रह्मा बाबा की कितनी गहरी याद थी। हमारे सामने तो ब्रह्मा बाबा का उदाहरण है, शिव बाबा की शक्ति है, लेकिन एग्जाम्पल भी है। तो हमारे पास बच्चों के पास डबल इंजन है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था। जिगरी प्यार था और जिगरी याद थी। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प के पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान होते हैं। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएंगी। पतित पावन एक को ही कहा जाता है। आगे चल, तुम्हारा आवाज निकलेगा। अभी तो निकला हुआ है ना। आगे चल, तुम्हारा आवाज निकलेगा। यह तो सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो, बाप कहते हैं कि पतित पावन मैं ही हूं। आप देखेंगे ना, अभी विदेश में, कई ऐसे देशों में जहां पे ब्रह्मा कुमारी की संस्था रजिस्टर हुई है, उन्हों का पहला कार्य होता है इंटरफेथ में, सभी धर्मों को मिलाने के लिए। और कई जगह पे ये सर्टिफिकेट मिला है ब्रह्मा कुमारियों को, आप ही सभी धर्मों को मिला सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, आगे चल, तुम्हारे आवाज निकलेगा। यह तो सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो, बाप कहते हैं कि पतित पावन मैं ही हूं। मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। ये ओना रहना चाहिए कि हमारा शान है कि जाने से पहले हमने फुल मेहनत करके, फुल पढ़ाई पढ़ करके, फुल याद में रह करके कर्म के हिसाब किताब चुकतू की, तब तो ऊंचा पद मिलेगा ना। कहां भी मूंझते हो तो पूछ सकते हो। सत्युग में होते ही थोड़े हैं, अभी तो अनेक धर्म है। जरूर हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे बनेंगे जैसे थे। डिटेल में क्यों जाए, जानते हैं हर एक अपना अपना पार्ट आकर बजाएंगे। अभी सबको वापस जाना है, क्योंकि यह सब सत्युग में थे ही नहीं। बाप आते ही है एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करने। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है, फिर सत्युग जरूर आएगा, चक्र जरूर फिरेगा। एक वंडरफुल आगे बढ़ने की मोमेंटम है अभी। संगम युग एक कल्याणकारी युग क्यों है? क्योंकि सत्युग आ रहा है, इसीलिए कल्याण, हर एक कदम में ब्राह्मणों के लिए कल्याण है। तो बाबा कहते हैं, अभी सबको वापस जाना है, क्योंकि क्योंकि यह सब सत्युग में थे ही नहीं। बाप आते ही है एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करने। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है, फिर सत्युग जरूर आएगा, चक्र जरूर फिरेगा। टू मच ख्यालात में ना जाए, बहुत चक्र की एनालिसिस नहीं चाहिए। टू मच ख्यालात में ना जाए, मूल बात है कि हम सतो प्रधान बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। ज्ञान चक्र का ज्ञान क्यों मिला है, मुझे क्या बनना है, उसके लिए वो ज्ञान मिला है। तो मूल बात है सतो प्रधान बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। कुमारियों को तो इसमें लग जाना चाहिए, कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते, परंतु आजकल तो दूसरा है सिचुएशन, परंतु भूखे हो गए हैं, माना लोभ आ गई है आजकल, बहुत फैसिलिटीज चाहिए वगैरह, तो भूखे हो गए हैं तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। तुम समझते हो अब पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम राजयोगी है, बाप से वर्षा जरूर लेना है। अभी तुम पांडव सेना के बने हो, अपनी सर्विस करते हुए भी यह ख्याल रखना है हम जाकर सबको रास्ता बताएं। अपनी सर्विस ड्यूटी जो है वो अलग है, लेकिन उसके अलावा भी हम जाकर सबको रास्ता बताएं। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने एक बारी अव्यक्त मुरली में स्पष्ट किया था कि बच्चे चार प्रकार की सेवा में खुद को बिजी रखना है। एक है स्व की सेवा, अपनी उन्नति, अपनी कैरेक्टर का सुधार करना, वो सेवा। दूसरी है विश्व की सेवा, जो अपने संपर्क संबंध द्वारा होती है, कनेक्शंस द्वारा होती है। तीसरा है यज्ञ सेवा, जो यज्ञ में बीज बोते हैं, मन तन धन सफल करते हैं। और चौथा है मनसा सेवा। अब ये चार प्रकार की सेवाओं का टाइम टेबल आप बनाओ खुद के लिए, तो और बातों के जाने में कोई भी मार्जिन नहीं है, टाइम वेस्ट करने का कोई मार्जिन नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं इस हालत में मर जाए तो हमको क्या पद मिलेगा। हिम्मत है बाबा को पूछने के लिए तो बाबा झट बता देंगे, सर्विस नहीं करते हो इसीलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेवे सो तो मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता। समझो बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं तो क्या पढ़ सकेंगे। बाबा बता देंगे तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे, पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा, स्वर्ग का फुल सुख पा नहीं सकेंगे। जो फुल सर्विस करेंगे, अब ये फॉर्मूला बाबा बता रहे हैं, जो फुल सर्विस करेंगे पढ़ेंगे वही फुल सुख पाएंगे। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार यही फुरना रखना है, अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं, हम कितने मार्क्स से पास होंगे सब जाने जाते हैं, फिर कहा जाता है भावी। सब जान जाते हैं फिर कहा जाता है भावी। अंदर में दुख होगा ना, बैठे बैठे हमको क्या हो गया, बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते हैं, इसीलिए बाप कहते हैं सुस्ती मत करो। समय घड़ी घड़ी पर, श्वास श्वास पर याद बनी रहे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ कर पतित से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस पड़ना चाहिए। देखते हैं यह विकार बिगर, गंद गुण खाने बिगर रह नहीं सकते, फिर भी समझाते रहना चाहिए। नहीं मानते तो क्या समझना है? नहीं मानते तो समझो हमारे कुल का नहीं है। कोशिश कर पियर घर ससुर घर का कल्याण करना है, संबंध तो निभाना है। ऐसी भी चलन ना हो जो कहे, माना जो वो कहे कि यह तो हमसे बात भी नहीं करते, मुख मोड़ दिया है। नहीं, सबसे जोड़ना है। हम उनका भी कल्याण करें तो इसके लिए क्या चाहिए? बहुत रहम दिल बनना है, किसी को रिजेक्ट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, लेकिन रहम दिल बन करके उनका कल्याण करना है। हम सुख तरफ जाते हैं तो औरों को भी रास्ता बताए। अंधों की लाठी तुम हो ना, गाते हैं अंधों की लाठी तू, आंखें तो सबको है फिर भी बुलाते हैं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। शांति सुख का रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है, आगे थोड़े ही समझते थे। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते थे, राम राम कहे, मछली को खिलाते थे, चींटियां को खिलाते थे। अब ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करने की दरकार नहीं है। अभी बाबा थोड़ा टॉपिक बदली कर रहे हैं। पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते हैं, एक ही तूफान लगता है कितने मर जाते हैं। नेचुरल कैलामिटीज तो अब बहुत जोर से आएंगी, जब पांच तत्व एक साथ अपना डांस शुरू करेंगे ना, तो समझ लो महाविनाश शुरू हो गया। अभी तो बाकी छोटे बहुत इधर कुछ रिहर्सल्स होते रहते हैं। तो नेचुरल कैलामिटीज जो अब बहुत जोर से आएंगी, यह रिहर्सल होती रहेगी, यह सब विनाश तो होना ही है। अंदर में आता है अब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, जैसे कल्प पहले बनाए थे बनाएंगे, फिर भी वही जो कल्प पहले बनाया होगा। उस समय वह बुद्धि आ जाएगी, उसका ख्याल अब क्यों करे, इससे तो बाप की याद में रहे, इससे तो बेहतर बाप की याद में रहे। याद की यात्रा को नहीं भूलो, महल तो बनेंगे ही कल्प पहले मिसल। तो अपनी महल बनाने की चिंता में नहीं रहो, वो तो बनाने वाले तो बहुत आएंगे, लेकिन जितना याद की यात्रा पे रहेंगे उतना बढ़िया महल बनेगा। महल तो बनेंगे ही कल्प पहले मिसल, परंतु अभी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है। कौन सी खुशी? कि हमको बाप टीचर सतगुरु मिला है। याद की यात्रा में तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है कि हमको बाप टीचर सतगुरु मिला है। इस खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम जानते हो हम आए ही हैं अमरपुरी का मालिक बनने हैं। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए। यहां रहेगी, यहां खुशी रहेगी, तब फिर 21 जन्म वह स्थायी हो जाएंगे। बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद पड़ेंगी, फिर आदत पड़ जाएगी। जानते हैं इस अपवित्र दुनिया को आग लगनी है। तुम ब्राह्मण ही हो जिनको यह ख्याल है। इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, सत्युग में यह कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। अभी अंत है, तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी अंत है और तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अंत तक श्वास याद की यात्रा पे चलनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि है, उन पर तरस रख समझाना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि है, उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। दूसरा, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है। ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है। रहन दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। संकल्पों का विस्तार को छोड़ करके एक बाप की याद में रहना है। वरदान, बहुत ही सुंदर वरदान है आज। सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से, सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजय बनने में, संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है, तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसीलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी सहज राजयोगी बनो तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। तो कोई भी बात का भय नहीं, चाहे अपने तमोगुणी संस्कारों पर विजय पाने का भय, संस्कारों मिलाने का भय, या अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने का भय, तो वो भय पूरा होता है तब प्रत्यक्षता होती है। स्लोगन, देहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसीलिए हद में नहीं आओ। बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसीलिए हद में नहीं आओ। और आज का व्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है, वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा भी अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। इसीलिए अब कर्म बंधनों से कर्म योगी बनो, अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो, तो सदा एवर रेडी रहेंगे। चेक करो अंदर कोई भी विकार छिपा हुआ तो नहीं है। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। सभी भाई बहन थोड़ी देर बैठे रहेंगे। आज विशेष वाराणसी से हम सभी के बीच में एक विशेष मेहमान आकर के पहुंचे हैं, जिनका समाज में और ग्लैमर वर्ल्ड में अपना एक विशेष नाम है, आदरणीय बिंकल शुक्ला जी। आपसे निवेदन है कि कृपया आप मंच पर पधारे। तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं। जब तक मंच सजे हम आपका परिचय देते हैं। आपने वैसे आपका जन्म तो मुंबई का है, लेकिन आप बड़े बनारस में ही हुए हैं। और आपने समाज सेवा के क्षेत्र में और ग्लैमरस वर्ल्ड के क्षेत्र में अनेक ऐसे पुरस्कार प्राप्त किए हैं जो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन अभी अभी हाल ही में आपने मिसेज ग्लैमर वर्ल्ड विजेता 2025 इंटरनेशनल दुबई में आपको ये पुरस्कार मिला है। और उस पुरस्कार में जो ताज आपने पहना, जो सम्मान आपका हुआ, वही हम फिर से आपको यहाँ पर पहनाने वाले हैं, उसी से सम्मानित करेंगे। लेकिन पहले सम्मान से पहले हम चाहेंगे आपसे दो शब्द सुनना चाहेंगे। आदरणीय बिंकल शुक्ला जी, अच्छा सबसे पहले आदरणीय गोपी बहन जी, आप तिलक देकर के सम्मान करेंगे। हम तालियों से अपना सहयोग दे सकते हैं। कन्या ताज पहनाकर आपका सम्मान कर रहे हैं। तालियां थोड़ी कम ना पड़ जाए। अभी चंद्रेश भाई गुलदस्ता देकर के स्वागत करेंगे और दिनेश भाई भी गुलदस्ता देकर के स्वागत करेंगे। ज्ञानेश्वर भाई आप फूल देकर के स्वागत करेंगे।
रवि भाई भी फूल दें, सुशील भाई फूल दे करके सम्मानित करें। अब बैठिए। आज हम सबके लिए यह बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारी विशेष बाबा की लाडली और हम सबकी स्नेही बहन जो कि कई कई क्षेत्रों में, संगीत के क्षेत्र में तथा साहित्य के क्षेत्र में और सनातन धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ती हुई, सबको संदेश देती हुई, कईयों को इस प्रकार की भावना क्रिएट कर रही हैं ताकि सब के सब अपने आदि अनादि सनातन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि हमारे भारत का आदि अनादि धर्म सनातन धर्म है। उस धर्म के बारे में जानकारी रहे और लोगों के अंदर आध्यात्मिकता की भावनाएं जागृत हो, जिसके कारण आपने एक नया रास्ता चुना है। वो रास्ता है कि जगह जगह जाकर के लोगों को प्रेरित करना और उनके फलस्वरूप आपको भारत के अंदर भी कई स्थानों से अवार्ड मिले हैं। और अभी आप देख रहे हैं, आपको दुबई में भी आप गए और मिस अवार्ड के हिसाब से आपको सम्मानित किया गया। हम सभी मिलकर के करतल ध्वनि से आपका बहुत बहुत स्वागत स्वागत के साथ सम्मान करते हैं। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है कि एक बहन इस प्रकार से पूरे भारत तो क्या विश्व के अंदर भी जाकर के ऐसी प्रेरणाएं जागृत कर रही हैं। और वो समय दूर नहीं है जब यही भारत स्वर्ग बनेगा, आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य होगा और हम सभी उसी भारत की, हमारा जो भारत देश सर्व देशों से महान रहा है, सर्व देशों के लिए गाइड रहा है, उसी भारत के हम सभी बाबा के बच्चे इस धरती को, भारत को स्वर्ग बनाएंगे, जिसको हम सब क्या कहते हैं, राम राज्य लाएंगे। ऐसा राज्य लाने के लिए बाबा ने हम सबको निमित्त बनाया है, जिसके लिए हमारी बाबा की लाडली बहन और ये भी एक कार्य करके आगे बढ़ रही हैं। आपको बहुत बहुत बधाइयां हैं, आगे बढ़ते रहो। बाबा के घर में आकर के आप शुभकामनाओं के द्वारा ऐसी शक्ति लेके जाएंगे ताकि इस कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे। अभी हम सुनेंगे हमारी आदरणीय बहन से। स्टैंडिंग माइक दीजिए।
यहाँ पे बैठे सभी भाई बहन को मैं नमस्ते, मेरा प्रणाम, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। मैं बिंकल शुक्ला काशी बनारस से, आज हमको ब्रह्मा कुमारी संस्थान इंटरनेशनल माउंट आबू में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए चंद्रांशु जी महाराज जो अयोध्या से हैं, चंद्रेश भाई साहब जो माउंट आबू इंटरनेशनल संस्थान ब्रह्मा कुमारी में अपना पूरा जीवन समर्पित किए हैं, और मुकेश भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे आप सबके बीच में आने का मौका मिला, ये शक्ति महसूस करने का मुझे मौका मिला। यहाँ पे आके मुझे ऐसी शक्ति ऐसी ताकत फील हुई है, हम अपने शब्दों में कुछ कहेंगे तो शायद कम होगा। मैंने कल यूनि में बाबा की कुटिया में जहाँ बाबा अपनी बुक्स लिखा करते थे, मैं उस कुटिया में गई, मुझे ऐसी शक्ति मेरी मस्तक पे महसूस हुई, ऐसी गर्माहट मुझे फील हुई, मैं पूरी तरह से निंद्रा में हो गई, मैं सो गई, मुझे कुछ पता नहीं था। मेरे साथ बहन जी थी, उन्होंने बोला कि चलते हैं, मुझे याद भी नहीं, उन्होंने मुझे टच किया, बस मुझे इतना याद है। ये शक्ति जो मैंने महसूस किया है, ये जो ताकत मैंने महसूस की है, शायद मैं अब जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगी। और ये सिर्फ पूरे वर्ल्ड में बोलूं तो ब्रह्मा कुमारी में ही आके संभव है। कहते हैं राम को सभी जानते हैं, राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो एक अच्छे पिता, एक अच्छे बेटे, एक अच्छे पति, एक अच्छे भाई थे। उनको सबने बहुत बहुत उनका सब सम्मान करते हैं, बहुत उनके उनकी सेवा करते हैं, लेकिन क्या किसी ने राम जैसा चरित्र अपने अंदर उतारने का प्रयास किया? नहीं, बहुत कम लोग हैं। अगर वो संभव है तो ब्रह्मा कुमारी में ये सिखाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है, ये बताया जाता है हमारे सनातन धर्म को कैसे बनाए रखना है, कैसे आगे बढ़ाना है, हमें कैसे उस रास्ते पे लोगों को लाना है। ये सिर्फ और सिर्फ ओनली ब्रह्मा कुमारी में ही संभव है। पूरे वर्ल्ड में अगर किसी ने इंसान को इंसान बनाने का, परमात्मा से मिलाने का अगर कार्य कर रहे हैं, तो वो ब्रह्मा कुमारी संस्थान। हमें यहां आकर इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर महसूस करके और हम यहां से लेके जाएंगे, हम इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं तहे दिल से जितना भी शुक्रिया धन्यवाद करूं वो कम होगा। आप सभी बहन भाई माता पिता यहां पे बैठे सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, सम्मान करती हूं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं, अगर कुछ गलतियां हो गई हों तो उसे माफ कीजिएगा। धन्यवाद।
हमें बहुत खुशी है कि आप सनातन धर्म के बारे में सबको जानकारी देते हुए, विशेष करके ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय भारत तो क्या पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार से आदि सनातन देवी देवता धर्म के बारे में जानकारी दे रहा है। और भी वह समय दूर नहीं है जब ये विद्यालय भारत और विश्व के एक एक नागरिक के अंदर ऐसी आध्यात्मिक क्रांति जागृत करेगा और सबके अंदर यही संकल्प रहेगा कि एक ही परमात्मा शिव है जो हम सबका पिता है और हम सबको शक्ति देने वाला है, और हम सभी उस एक परमात्मा के संतान है, सारा विश्व एक है और हम सभी आत्माएं आपस में उनके संतान भाई भाई हैं। ये नारा भी जल्दी ही सारे विश्व के अंदर गूंजेगा, ऐसी हमारी शुभ भावना है। ओम शांति। अभी हम कुछ छोटी सी यादव तो नहीं केवल छोटी सी चीज पकड़ाते हैं जो कि हमारे ही स्नेह की निशानी है। शांति में बैठ करके प्यारे बाबा को याद करते हुए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि जिन्होंने हम सबको इतनी शक्ति दी और खास के हमारी ऐसी विशेष भारत के रत्न जो हमारे बीच में है उनको भी हम अपने मन की शुभकामनाएं देते हैं। ओम शांति। अब एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे।